24 नवंबर दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। तुर्की ने अपनी वायु सीमा का उल्लंघन कर रहे रूस का लड़ाकू विमान मार गिराया। रूस ने सीमा उल्लंघन का खंडन किया।
Мы, конечно, внимательно проанализируем все, что случилось. Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений.
अभिनेता आमिर खान भी असहिष्णुता की बहस में शामिल। देखेंगे किस तरह फेसबुक से हुए हैं कई महिलाओं के जीवन में परिवर्तन।
फेसबुक पे आने से पहले मैं ऑर्कुट पे थी, ऑर्कुट पे ही मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। पहले कविताएं सिर्फ डायरी तक सीमित थी, और फेसबुक पे आने पर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मन में आया कि मैं भी अपनी कविताएं यहाँ पर पोस्ट करूं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की में रूसी विमान को गिराने की घटना को पीठ में छुरा भोंकने जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि तुर्की के साथ रूस के रिश्तों पर इससे काफी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस समय रूसी विमान गिराया गया है तब विमान तुर्की की सीमा से 4 किलोमीटर दूर सीरियाई हवाई क्षेत्र में था। इससे पहले तुर्की ने दावा किया था कि रूसी विमान तुर्की की हवाई क्षेत्र में घुस आया था। इस मसले पर तुर्की के अनुरोध पर नेटो गठबंधन सेना एक बैठक करने वाला है। वहीं खबर है कि सीरियाई विद्रोहियों के हमले की वजह से रूस के एक सैन्य हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करा दी गई है। मानवाधिकार संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर लटाकिया प्रांत में एक सरकारी इमारत के नज़दीक पहुंचने में कामयाब रहा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में आज भारतीय समुदाय के हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए सिंगापुर, जर्मनी और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है और नवीनीकरणीय ऊर्जा, वायु और परमाणु ऊर्जा पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारतीय मुद्रा रुपए की अहमियत के बारे में कहा।
विश्व भारत की करेंसी को भी उतना ही सम्मान दे या हम चाहते कि नहीं चाहते। पहली बार लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में रूपी बॉन्ड के लिए हम लोग आगे बढ़े। रेलवे के लिए अब रूपी बॉन्ड दुनिया का कोई भी व्यक्ति रुपयों में इन्वेस्ट कर सकता है और उसको रुपयों में वापस मिल सकता है। ये रुपये की इज्जत का कमाल है।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पिछले अगस्त में हुए हमले के मामले में सैन्य अदालत में 2 लोगों को पेश किया गया। पिछले अगस्त में बैंकॉक में हमले में 20 लोगों की मौत हो गई थी। बिलाल मोहम्मद और यूसुफ मिरेले को अदालत में पेश किया गया। ये दोनों पश्चिमी चीन के उइघर समुदाय के हैं। इन लोगों पर 10 आरोप लगाए गए हैं जिनमें हत्या का आरोप भी शामिल है, लेकिन चरमपंथ का आरोप इन पर नहीं लगाया गया है। मिस्र के अधिकारियों ने कहा है कि उत्तरी सिनाई में एक होटल पर हुए हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये हमला 2 आत्मघाती हमलावरों और 1 बंदूकधारी ने किया था। होटल के प्रवेश द्वार पर विस्फोटकों से भरी 2 गाड़ियों में धमाके हो गए जब सुरक्षा गार्डों ने गाड़ियों पर गोलियां चलाईं। एक और हमलावर ने होटल में घुसकर खुद को उड़ा लिया। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। तुर्की ने दावा किया है कि उसने रूस के एक विमान को मार गिराया है। वहीं रूस का कहना है कि उसके विमान ने किसी भी देश के वायु क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तुर्की की इस कार्रवाई के गंभीर परिणाम होंगे और दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित होंगे। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यूरो के साथ अमल चौधरी।
सीरिया में मंगलवार को रूस के एक विमान को तुर्की ने मार गिराया। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक रूस के युद्धक विमान को तुर्की की सेना ने अपना निशाना बनाया। तुर्की ने दावा किया है कि रूस का विमान हैते सूबे के एयर स्पेस में घुस आया था। तुर्की का कहना है कि विमान को निशाना बनाने से पहले उसे कई बार चेतावनियां भी दी गईं, जिसे नहीं मानने के बाद उसे गिराना पड़ा। रूस ने इस बात से इनकार किया है कि उसके फाइटर प्लेन ने तुर्की की हवाई सीमा के जरिए सीरियन सीमा का उल्लंघन किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा, आज जो कुछ भी हुआ हम उसका विश्लेषण बहुत ही बारीकी से कर रहे हैं। आज की इस दुखद घटना के बाद रूस और तुर्की के संबंधों में बहुत बदलाव आएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। वहीं दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि उनके विमान ने किसी तरह का वायु क्षेत्र उल्लंघन नहीं किया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार, हमें अभी तक रक्षा मंत्रालय से इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि आखिर विमान किस वजह से गिराया गया, लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं कि हमारे विमान ने किसी के भी सीमा क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया। हालांकि इससे जुड़ी अभी तक कोई स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए अभी इस पर और कुछ नहीं कह सकता। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ देर बाद ही तुर्की की मीडिया ने इससे जुड़ी खबरें चलाना शुरू कर दी। कुछ इस तरह से उसके न्यूज चैनलों पर ये खबरें चलाई गईं।
Ekranda ve değişiyor. Suriye sınırında bir uçak düşürüldü. Uçak Rusya yapımı.
एक विमान को सीरियाई सीमा के नजदीक गिराया गया है। ये विमान रूस में बना SU-24 है। ये एक युद्धक विमान है जिसने 1960 में पहली बार उड़ान भरी थी, लेकिन हाल तक उसमें कई बदलाव किए जाते रहे हैं। तुर्की मीडिया में जारी एक रिपोर्ट, इसमें मौजूद दोनों पायलट विमान के क्रैश होने से ठीक पहले पैराशूट की मदद से उससे निकल गए, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार एक पायलट को सीरियन विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। विमान गिराने के वाकये को एक कैमरे में भी कैद किया गया है। पूरा इलाका धुएं से भर गया था। वहीं तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दोवुतोग्लू ने विदेश मंत्रालय से इस विषय पर नेटो, संयुक्त राष्ट्र और संबंधित देशों से परामर्श करने के लिए कहा है। तुर्की की सरकार बशर अल असद की सरकार के खिलाफ है। तुर्की कई बार सीरिया पर विमान गिराने का आरोप भी लगा चुका है। उसने कई बार सीरिया पर उसके वायु क्षेत्र के उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। दूसरी तरफ रूस असद का खुलकर समर्थन कर रहा है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में नाटो ने सीरिया और तुर्की में हवाई हमलों को लेकर रूस को चेतावनी दी थी। तब नाटो के सदस्य तुर्की ने कहा था कि उसने रूस के एक लड़ाकू विमान को रोका है जो सीरियाई सीमा के पास तुर्की के हवाई क्षेत्र में घुसाया था। तुर्की ने रूस को चेतावनी भी दी थी कि अगर दोबारा तुर्की की हवाई सीमा का उल्लंघन हुआ तो रूस को इसके नतीजे भुगतने होंगे।
तुर्की ने रूस का युद्धक विमान गिराया। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के देश में बढ़ती असहिष्णुता वाले बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने संसद में इस मुद्दे पर बहस की मांग कर डाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आमिर खान को असहिष्णुता पर बहस के लिए आमंत्रित किया है। कहीं उनके भारत के ब्रांड एम्बेसडर होने पर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं उनकी देशभक्ति पर। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
किरण एंड आई हैव लिव्ड ऑल आवर लाइव्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम किरण सेज शुड वी मूव आउट ऑफ इंडिया नाउ दैट्स अ डिजास्ट्रस।
पत्रकारों को सम्मान देने के कार्यक्रम में आमिर ने डर का इजहार किया तो जवाब में नाराजगी और गुस्से की मानो बाढ़ आ गई। दिल्ली के इस कार्यक्रम में आमिर खान ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो देश के माहौल को लेकर चिंतित हैं, और एक बार तो उनकी पत्नी किरण राव ने देश छोड़ने तक की सलाह दे डाली थी क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए डरती
हैं।
इस बयान के बाद आमिर के साथ काम कर चुके कई कलाकार ही उनके खिलाफ नजर आए। भारतीय जनता पार्टी सांसद और अभिनेता परेश रावल ने ट्वीट किया कि अगर मैं इसे यानी भारत को अपनी मातृभूमि मानता हूं तो छोड़ने की बात कभी नहीं करूंगा। ये बात तभी करूंगा अगर देश को अपनी मातृभूमि ना मानूं। परेश रावल ने देशभक्ति का मुद्दा उठाया तो सेंसर बोर्ड के सदस्य और फिल्मकार अशोक पंडित बोले,
क्या इंटॉलरेंस है? बताओ ना, आपको कहाँ तकलीफ है? कौन आपको तंग कर रहा है? कहाँ आपको जीने नहीं दिया जा रहा है? आपको ये गलत फहमी हो गई कि अगर मैं कंट्री को इंटॉलरेंट बोलूं तो मैं इंटेलिजेंट माना जाऊंगा।
वहीं अभिनेता, गायक और संगीतकार पीयूष मिश्रा ने जो कहा वो ना समर्थन था ना आलोचना। यूं कहिए कि समझदार को इशारा काफी है।
बीच में मुझे भी लगा था कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है, बीच में इतने सारे बयानबाजी आ रही थी, लेकिन अजीब सी बात है कि मुझे लगा, जैसे ही मुझे लगा कि इंटॉलरेंस बढ़ गई है वैसे ही बिहार चुनाव का रिजल्ट आ गया। और बिहार चुनाव के रिजल्ट के हैरत की बात है कि बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद में कोई भी ना इंटॉलरेंस की बात कर रहा है ना गोहत्या की बात कर रहा है।
वहीं सोशल मीडिया पर घमासान की शक्ल लेती बहस मानो बेलगाम हो चली है। ये आम जनता का आईना भले ना हो पर तल्ख भाषा में किए ट्वीट सहिष्णुता तो नहीं ही दिखाते, जैसा वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने कहा। ट्वीट के जरिए वो बोले कि संघ के कंट्रोल रूम अगर आप अपने फॉलोअर को आमिर पर हमला करने को कहोगे तो क्या ऐसा करके आमिर को ही सही साबित नहीं कर रहे? सरकार ने कथित असहिष्णुता को सिर्फ कानून व्यवस्था की कमी बताया है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता बुलाई गई। पार्टी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा,
आपको पब्लिसिटी मिल सकती है एक आपकी पंक्ति कहने से, आपको लाभ हो सकता है, आपको कवरेज मिल सकता है, आपको सुर्खियां मिल सकती हैं, लेकिन भारत के नाम पर इस तरह के बयान दाग लगाते हैं।
आमिर का बयान ऐसे समय आया है जब गुरुवार से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। आमिर से पहले शाहरुख खान, दिबाकर बैनर्जी समेत फिल्म जगत से जुड़े कई लोग, लेखक, इतिहासकार और वैज्ञानिकों ने देश में असहिष्णुता के चलन के बढ़ने का दावा किया था और इस पर सरकार के कड़े कदम न उठाने पर हताशा जताते हुए अपने सम्मान लौटाने जैसे कदम तक उठाए हैं। आज विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,
ऑलरेडी हम नोटिस दे दिए हैं और इंटॉलरेंस के बारे में डिस्कशन करने के बारे में, और वो रूल 193 के तहत शायद एडमिट हो जाएगा।
राजनीतिक रस्साकशी अलग, कई लोग आमिर पर दोगलेपन का इल्जाम भी लगा रहे हैं। आमिर भारत के टूरिज्म कैंपेन इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं कई कह रहे हैं कि आमिर ने तो भगवान की आलोचना करने वाली फिल्म पीके में काम किया, अगर उन्हें इसकी छूट है तो वो कैसे कह सकते हैं कि देश में असहिष्णुता है। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
चेन्नई के निवासियों पर बारिश का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। आईटी कंपनियों के सैकड़ों कर्मचारियों को बारिश की वजह से अपने दफ्तरों में रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जो लोग किसी तरह बाहर निकले भी तो उन्हें रात 2 बजे भी जबरदस्त ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश कम हो चुकी है, लेकिन चेन्नई वासियों को हर जगह जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। इमरान कुरैची की रिपोर्ट।
आज सुबह 2:30 बजे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक फोटो आई जिसको देखकर ऐसा लगा जैसे ये फोटो शाम के 7 बजे के ट्रैफिक जाम के वक्त खींची गई थी। दरअसल ये फोटो 2:15 बजे ही ली गई थी। जो चेन्नई शहर को जानता है वो भी इस फोटो को देखकर हैरान हो सकता है। ट्रैफिक इतनी थी कि एक आईटी कंपनी के कर्मचारी जूलियन ने ये फोटो अपने दोस्तों को भेज दी। लेकिन जूलियन क्या कर रहे थे ऑफिस में उस वक्त? क्या उनकी नाइट ड्यूटी थी? जूलियन कहते हैं, हमने ऑफिस में ही रात गुजारी। दरअसल जिस ऑफिस टैक्सी को हमें घर ले जाना था वो पानी में फंस गई थी और टेक पार्क के अंदर नहीं आ पाई थी, तो हमारे मैनेजमेंट ने हमारे ऑफिस में ही सोने का इंतज़ाम कर दिया था क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मेरे साथ हमारे कंपनी में ही करीब 100 लोग थे। हमारे टेक पार्क के 3 बिल्डिंगों में भी बहुत सारे लोगों को रुकना पड़ा। ये थे जूलियन के शब्द। कल जो बारिश हुई वह पिछले हफ्ते जैसे नहीं थी। इसके बावजूद रोड पर पानी इतना था कि गिंडी के पास ट्रैफिक जैम 4 या 5 घंटों तक चला। लोगों का मानना है कि यह पानी चेन्नई के रिजर्वायर से उभर कर निकला होगा, लेकिन इसका कारण क्या होगा? मद्रास हाईकोर्ट के वकील अनंत कृष्णा कहते हैं, ये कहना ठीक नहीं होगा कि दोष सिर्फ सरकार का है। जहां भी झील विस्तार था वहां लोगों ने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, और जब बारिश आती है तो जाहिर है कि निचले इलाकों में पानी भर जाता है। दोष लोगों का भी है। ये थे अनंत कृष्णा के शब्द। NGO केयर अर्थ के प्रमुख डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन चेन्नई के बारिश की मुसीबतों को अलग नजरे से देखते हैं। चेन्नई एक तटीय शहर है, लेकिन यहाँ आयोजन अंतर्देशीय शहर का किया गया है और जो भी विकास हुआ है वह अंतर्भूमि क्षेत्र में हुआ है, तो पानी तेजी से जमीन में नहीं जा पा रहा है। दुर्भाग्य है कि चेन्नई के मास्टर प्लान में भी इस बात का जिक्र भी नहीं है, और 2005 से बारिश बहुत ही जोर से आती है। ये थे डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन के शब्द। स्कूल और कॉलेजों इस महीने करीब 3 हफ्तों से बंद हैं, और मौसम विभाग कहता है कि अगले 24 घंटों में चेन्नई में बारिश होगी, लेकिन उतनी जोर से नहीं होगी जैसे पिछले हफ्ते हुई थी। लेकिन यह कोई नहीं कह सकता है कि बारिश के पानी से निवासियों की मुसीबतें कब खत्म होगी। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। मध्य प्रदेश में रतलाम झाबुआ लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सीट अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़कर 45 पहुंच गई है। भोपाल से शुरे नियाजी ने ये रिपोर्ट भेजी है।
ये आवाज मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय की है, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बरसों बाद खुशी मनाने का मौका मिला है। कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने भाजपा की प्रत्याशी निर्मला भूरिया को लगभग 90,000 मतों से हराकर झाबुआ रतलाम लोकसभा का उपचुनाव जीत लिया है। ये सीट निर्मला भूरिया के पिता दिलीप सिंह भूरिया की मौत की वजह से खाली हुई थी। जीत के बाद कांतिलाल भूरिया ने एक सांस में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कोसा।
आम आदमी की जीना हराम कर दिया और यहाँ गुंडारा साबित कर दिया। ये सारी चीजें आज डूंगरपुर से यहाँ पर रतलाम की रेलवे लाइन तो आपके वहाँ बांसवाड़ा तक एक कदम नहीं बढ़ा। ये कैसा मतलब प्रधानमंत्री और कैसी सरकार है, सारी योजना खटे और इतना पैसा कांग्रेस सरकार में यूपीए सरकार में अरबों रुपया हर जिले में हर साल 200-500 करोड़ रुपया वो कहाँ गया, सारी योजना बंद कर दी, सारा पैसा कागज के ऊपर योजना बना के ये नरेंद्र मोदी जी और शिवराज खा गए। अब उसका जवाब जनता ने बिहार में और झाबुआ में दिया है, अब उनके दिमाग अब ठीक होगा और जनता भी इस लड़ाई के लिए कांतिलाल भूरिया के ऊपर विश्वास किया मतदाताओं ने, अब उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूं।
यह हार मुख्यमंत्री के लिए तगड़ा झटका है। झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र में उन्होंने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। पेटलावद में हुए विस्फोट में मरने वाले हर एक व्यक्ति के घर मुख्यमंत्री गए थे, जिसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री की वो कवायद भी खास असर नहीं दिखा पाई। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान हार की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं।
देखिए, झाबुआ रतलाम लोकसभा की सीट ये परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है। इस बार हमको जीत का विश्वास था, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी मतदाताओं तक हमारे विकास की बात घर घर पहुंचाने में हमारी कमी रह गई। ये समीक्षा की बात है कि हम क्यों पिछड़े, तो भारतीय जनता पार्टी इसकी समीक्षा करेंगी।
वहीं राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई मानते हैं कि इस परिणाम से शिवराज सिंह चौहान की छवि को धक्का लगा है।
ये जो है रतलाम का जो रिजल्ट आया है, ये शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगाता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने इसको एक अपना एक प्रेस्टीज इशू बना लिया था, उन्होंने अपने आप को उसमें शामिल कर लिया था। उमूमन जब बाय इलेक्शन होते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री जो है वो इतनी शिद्दत से कैंपेन नहीं करते हैं। उन्होंने 16 दिन वहां गए और 52 पब्लिक मीटिंग एड्रेस करी, तो उन्होंने प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था और उनको बड़ा पूरा इसका विश्वास था कि भाजपा जो है वो भारी मतों से जीतेगी। मुझे लगता है कि दो उसके मुख्य कारण हैं कि जो भाजपा हारी, क्योंकि निर्मला भूरिया जो वहाँ की लोकल MLA भी थी पेटलाबाद से, तो खुद पेटलाबाद से ही वो पिछड़ी है और 8 में से 7 जो असेंबली सेगमेंट थे उसमें भाजपा पिछड़ी है। तो पेटलाबाद का जो जिलेटिन का जो एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें तकरीबन 100 लोगों की जान गई थी, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा लोगों के बीच में, क्योंकि जो उसका जो अक्यूज था राजेंद्र कंसुआ वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है।
देवास विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी गायत्री राजे ने कांग्रेस के जयप्रकाश शास्त्री को लगभग 31,000 मतों से हरा दिया। ये सीट गायत्री राजे के पति तुकोजी राव पवार की मौत की वजह से खाली हुई थी, लेकिन झाबुआ और रतलाम की हार ने भाजपा के लिए देवास की जीत को फीका कर दिया।
झाबुआ रतलाम संसदीय उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। और अब एक और अंतर्राष्ट्रीय विषय। अमेरिका का कहना है कि अगर चरमपंथ से निपटना है तो सभी देशों को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान अमरीकी विदेश मंत्री ने ये बात कही। साथ ही अमरीका ने अपने नागरिकों के लिए चरमपंथी हमलों के डर के चलते एक वैश्विक चेतावनी भी जारी की है। BBC संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ अमल चौधरी।
अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने इसराइल में फलस्तीन के हमलों को आतंकवादी करार दिया है। केरी ने यरूशलेम में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व को चरमपंथ के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा,
I'm here today to talk with the Prime Minister about the ways that we can work together, all of us.
मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस बारे में बात कर सकूँ कि आखिर इस तरह के आतंकवाद से हम सब एकजुट होकर कैसे लड़ सकते हैं। आतंकवाद को पीछे धकेलने के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आगे आना होगा। इस तरह की बेवजह हिंसा को रोकने, शांति की स्थापना और हर व्यक्ति को वो सब कुछ मुहैया कराने के लिए जिसका वो हकदार है, हमें आगे आना ही होगा।
अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी। फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने हालांकि कैरी के इस बयान का विरोध किया है। संगठन के अनुसार इसराइल पर उनके हमले केवल विरोध का तरीका है, आतंकवाद नहीं। इसके साथ ही अमरीका ने अपने मित्र देशों से अपील की है कि वो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ उसके अभियान में साथ दें। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट ने कहा कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में जानकारी साझा करना सबसे अहम कड़ी है। उन्होंने कहा,
This is actually an area where we do believe that there is more that our European partners can do.
हम ये मानते हैं कि हमारे यूरोपीय साथी जो जानकारी अमेरिका से साझा करते हैं, वो उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ उसकी संख्या भी भविष्य में बढ़ाएंगे। हम भी उनकी पूरी मदद करने को तैयार हैं।
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए वैश्विक स्तर पर यात्रा चेतावनी भी जारी की है, जिसमें उन्होंने चरमपंथी खतरों की बात कही है। चेतावनी के अनुसार इस्लामिक स्टेट, अलकायदा और बोको हराम जैसे चरमपंथी संगठन दुनिया के कई हिस्सों में हमले की तैयारी में हैं। यात्रियों को भीड़भाड़ वाले इलाकों और सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करते वक्त सतर्क रहने को कहा गया है। पूर्व संघीय उड्डयन प्रशासन के प्रवक्ता स्कॉट ब्रेनर ने कहा है कि चेतावनी के चलते हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा,
Our airport security is not designed to catch somebody.
हमारे एयरपोर्ट इस तरह से डिजाइन नहीं है कि जब कोई विमान में चढ़ जाए तब हमें उसकी जांच का ध्यान आए। हमारे एयरपोर्ट पर अधिकारी तब से जांच में लग जाते हैं जब से वहां आने वाला व्यक्ति अपना टिकट अधिकारियों को दिखाता है।
पूर्व संघीय उड्डयन प्रशासन के प्रवक्ता स्कॉट ब्रेनर के शब्द। मंत्रालय का कहना है कि ये अलर्ट अगले साल 24 फरवरी तक जारी रहेगा। पिछले कुछ महीनों में फ्रांस, रूस, माली और अन्य देशों में बड़े चरमपंथी हमले हुए हैं।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
अगर कोई कहे कि मैं जो कुछ भी हूँ फेसबुक की वजह से हूँ, तो सुनने में ये बात अटपटी सी लग सकती है, लेकिन कई महिलाओं के लिए फेसबुक का कुछ ऐसा ही महत्व है। ये महिलाएं भारत के छोटे शहरों से आती हैं और पिछले 5-1 साल में इनके जीवन में बड़े परिवर्तन हुए हैं, इसके लिए वो फेसबुक को जिम्मेदार मानती हैं। ऐसी ही महिलाओं पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं सुशील झा।
फेसबुक पर महिलाओं की संख्या कम है, ये बात हम सभी जानते हैं। महिलाएं कम एक्टिव रहती हैं, ये भी शायद आप में से कई लोग जानते हैं, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने फेसबुक पर लिख लिख कर अपनी पहचान बनाई है। कुमुद सिंह बिहार के पटना में रहती हैं और मैथिली भाषा में ई समाज नामक ई पेपर चलाती हैं। कुमुद का संबंध दरभंगा राजघराने से है और शादी के बाद ही उनका आम लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ। कुमुद ने औपचारिक स्कूली पढ़ाई नहीं की है और शादी के बाद उन्होंने ओपन स्कूल से 10वीं पास की। वो बताती हैं,
बिल्कुल मुझे पहचान तो बिल्कुल दी है, इसीलिए आज आपसे बात हो रही है। फेसबुक तो मुझे काफी पहचान दिया है जो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक कुमुद को कुमुद सिंह बनाया है फेसबुक ने।
फेसबुक पर कुमुद सिंह की पहचान एक ऐसी महिला के रूप में है जो बिहार की राजनीति, दरभंगा राजघराने और सामाजिक मुद्दों पर बेबाक राय रखती हैं, बेकार की टिप्पणी करने वालों को डांट देती हैं और अपने तर्कों के लिए ऑनलाइन लिंक्स का खूब इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था।
एडजस्ट करने में समय लगा और लोग मतलब समझ नहीं पा रहे थे, तो कहीं पे वो गाली भी दे रहे थे। एक जिद्दीपन आ गया, नहीं आपको ये समझना है, तो बस उसी से आ गया है लड़ना झगड़ना सब कुछ सिखा दिया।
एक तरफ कुमुद की छवि तेज तर्रार महिला की है तो प्रवेश सोनी मृदुभाषी कवियत्री हैं। प्रवेश राजस्थान के कोटा के रहने वाली है और उन्होंने भी इंटरनेट बच्चों से ही सीखा है। पिछले दिनों उनकी कविताओं को स्त्री होकर सवाल करती है नामक पुस्तक में शामिल भी किया गया। वो बताती हैं,
फेसबुक पे आने से पहले मैं ऑर्कुट पे थी और ऑर्कुट पे ही मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। पहले कविताएं सिर्फ डायरी तक सीमित थी और फेसबुक पे आने पर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मन में आया कि मैं भी अपनी कविताएं यहाँ पर पोस्ट करूँ। पोस्ट की टूटी फूटी थी, वो इतनी निखरी हुई नहीं थी, तो उन पे अच्छी प्रतिक्रियाएं आई, हौसला बढ़ा और लोगों से जान पहचान भी हुई। उन लोगों के प्रोत्साहन की वजह से आज सफर चल रहा है।
प्रवेश कहती हैं कि उन्होंने भी बुरे लोगों का सामना किया है फेसबुक पर। वो कहती हैं कि बुरे लोगों को इग्नोर करके चलना चाहिए, तभी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। प्रवेश के पति बिजनेसमैन हैं और आने वाले दिनों में प्रवेश की पुस्तक भी छपने वाली है। कुमुद और प्रवेश जैसी कई महिलाएं हैं जिनका जीवन फेसबुक के कारण बदल रहा है। अनुशक्ति सिंह अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रही हैं और वो कहती हैं कि फेसबुक ने उन्हें बहुत संबल दिया है।
देखिए, फेसबुक के आने से पहले मैं एक चुपचाप एक दमित घरेलू महिला थी
हालांकि मेरा जीवन सब दिन ऐसा नहीं था। शादी से पहले मैं एक बाहर जाने वाली क्वाइट आउट गोइंग लड़की थी, जो कि मीडिया मास कॉम करने के बाद एक वेबसाइट में अच्छी नौकरी पर थी। तो शादी हुई, अरेंज व्यवस्था विवाह था, अरेंज मैरिज था। एज पर कंडीशन मुझसे कहा गया कि नौकरी छोड़ दो। आर्मी ऑफिसर पति थे, मैंने जॉब छोड़ दिया। उनके साथ मैं अपना भविष्य तलाशने लगी। लेकिन वहां पर मुझे एक जो मतलब ऑल्दो सारी चीजें थी मेरे पास, लेकिन मुझे अपने बोलने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं थी। मैं नहीं बोल मुझे कुछ भी बोलने मुझे अगर कहीं बाहर भी जाना होता था उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए होता था।
फेसबुक से जुड़े रहकर ही अनुशक्ति ने ब्लॉग लिखना शुरू किया। उनका आत्मविश्वास जागा और उन्होंने अखबारों में लिखने की कोशिश की। वो बताती हैं कि अगले कुछ महीनों में घर में लड़ाई झगड़े बढ़े और वो अब अपने बच्चे के साथ अलग रह रही हैं।
ब्लॉग शुरू किया, पहला पोस्ट डाला, लोगों को अच्छा लगा तो मेरा भी थोड़ा उत्साह वर्धन हुआ। उसी दौरान मैं फेसबुक पे दो चार मतलब ऐसे लोगों के संपर्क में आई जो कि लगातार लिखते रहते थे। उन लोगों की प्रोफाइल से मुझे एक गांव कनेक्शन न्यूज़पेपर के बारे में पता चला। मैंने न्यूज़पेपर की फेसबुक पेज पे ही मैंने उनको एक आवेदन भेजा कि क्या मैं आपके अखबार के लिए लिख सकती हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा पहला आर्टिकल मंगवाया। उस आर्टिकल को काफी सराहना हुई और मेरा जो आत्मविश्वास जो बंद हो गया था कि मैं कहीं कुछ कर नहीं पाऊंगी, कभी कुछ वापस अपने करियर में नहीं लौट पाऊंगी, वो बिल्कुल वापस धीरे धीरे वापस आने लगा।
अब अनुशक्ति फ्रीलांस करती हैं और अपना नया जीवन बसाने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन अगर फेसबुक नहीं होता तो ये महिलाएं क्या कर रही होती, बताती हैं कुमुद और प्रवेश।
मैं क्या होती, मैं एक अच्छी पत्नी थी हूँ और होंगी भी। अब मैं एक पत्नी रहती, एक माँ रहती, बस लगता है यही रहती मैं।
वही ज्यादा से ज्यादा अपना थोड़ा सा जो पड़ोस का माहौल है वो बढ़ जाता, थोड़ा गपियाना जो उनसे ज्यादा हो जाता तो पड़ोस में ही जाके अपनी फ्रेंड से उनसे बातें गप्पे मारना होता है, और क्या, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं।
यानी कि अपने परिवार और पड़ोस में सिमटने की बजाय इन महिलाओं का दायरा बढ़ा फेसबुक की वजह से। कल सुनिए उन महिलाओं की बात जो चाह कर भी फेसबुक पर सक्रिय नहीं हो पाई हैं। सुशील झा, बीबीसी दिल्ली।
और अब एक नजर डालते हैं खेल समाचारों पर आदेश कुमार गुप्त के साथ।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल से नागपुर में मौजूदा टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम का उद्देश्य नागपुर में ही चार टेस्ट मैचों की सीरीज को अपने नाम करने होगा। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 2020 और एक दिवसीय सीरीज में तो दमदार खेल दिखाया, लेकिन टेस्ट सीरीज में उनका खेल अभी तक जमा नहीं है। मोहाली और उसके बाद बेंगलोर में टर्न लेते विकेट पर भारतीय स्पिनरों के सामने उनके बल्लेबाजों के हौसले जैसे ड्रेसिंग रूम में ही पस्त हो गए। केवल एबी डी विलियर्स ने ही विकेट पर जमने का दमखम दिखाया। उन्होंने अपने पिछले 100वें टेस्ट मैच में भी 85 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन फेफ डू प्लेसिस और हाशिम आमला कुछ खास नहीं कर सके हैं। दूसरी तरफ मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा ने विकेट पर टिकने का धैर्य और रन बनाकर भारत की मुश्किलें आसान की। भारतीय स्पिनरों का खौफ दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर इस कदर छाया है कि अभी तक 30 अफ्रीकी विकेट में से 27 विकेट स्पिनरों ने झटके हैं। और अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 12-12 तो मोहाली टेस्ट मैच में अमित मिश्रा ने 3 विकेट लिए। 2 विकेट तेज गेंदबाज वरुण एरोन को मिले। अब नागपुर में भारत की टीम क्या होगी इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे आज नागपुर में जब खेल पत्रकारों से भारत के कप्तान विराट कोहली ने बातचीत की तो किसी ने सवाल उछाला कि स्थानीय तेज गेंदबाज उमेश यादव को टीम में जगह मिलेगी, तो विराट ने अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए कहा,
सर शहर के हिसाब से प्लेयर तो सिलेक्ट नहीं कर सकते। मैच जीतना है वैसे लोगों को खुश रखने जाएंगे तो रिजल्ट का कोई गारंटी नहीं है। पॉसिबिलिटीज हैं, कंडीशंस के हिसाब से हम चेंजेस जरूर करेंगे जो अभी हम टीम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, तो अभी वो डिसाइड हुआ नहीं है तो आपको कल सुबह ही पता चलेगा।
उधर दुनिया भर के टेनिस सितारों से सजी चैंपियंस टेनिस लीग का दूसरा संस्करण कल से शुरू हुआ, जहां पंजाब मार्शल्स ने मेजबान मुंबई टेनिस मास्टर्स को 21-19 से हराया।
और आखिर में सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। तुर्की ने रूसी लड़ाकू विमान को गिराने का दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी निंदा की और कहा कि ये पीठ में छुरा भोंकने जैसा है। उन्होंने कहा कि तुर्की के साथ रूस के रिश्तों पर इससे गंभीर असर पड़ेगा। वही खबर है कि सीरियाई विद्रोहियों के हमले की वजह से रूस के एक सैन्य हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करा दी गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की हेमंत कुशवाहा ने, रेहान फदल को, सभी साथियों के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।